हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी के विधिक के घर से निकलने के बाद मलिक ने उसे किडनैप कर लिया। वो इस मौके का पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहा था। आंशी को बाहर अकेले देखते ही उसके आदमी उसे मलिक के अड्डे पर ले आए थे। आंशी के होश में आने पर मलिक ने उसे विधिक की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसके दोस्तों को उसने बेरहमी से मारा था। अगर तुम उसका सच जानते थे तो पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया, आंशी ने पूछा। अच्छा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? उसे पता चला गया कि मैंने तुम्हें भगाया है तो वो मुझे जिंदा छोड़ देता, मलिक ने जवाब में कहा। खैर, उसका छोड़ो, अब तुम दोनों एक दूसरे की पहुंच से बाहर हो। मलिक ने आंशी से बात करना छोड़ अपने एक आदमी से कहा, मेट, बाहर टेम्परेचर क्या होगा?
सर, लगभग 18 से 20 के बीच में है, मेट ने अपने मोबाइल में चेक करके जवाब किया।
5 काफी होंगे ना? नहीं, ये हमारी स्पेशल मेहमान है, खास खातिरदारी करनी तो बनती है, मलिक हवा में खुद से बातें कर रहा था। आंशी और मेट उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। आंशी से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मलिक ने आंशी की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी और उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने तेज आवाज में मेट से कहा, शाम तक हमारे स्पेशल गेस्ट की खातिरदारी में इस रूम में लगभग 7 से 8 एयर कंडीशनर इंस्टॉल हो जाने चाहिए।
लेकिन सर, रात को ठंड बढ़ जाती है, वो कमरा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर इतने सारे एसी लगने के बाद तो।
मेट भी मलिक की बेरहमी देखकर हैरान था। वो वहाँ नया ही आया था। उसने एक नज़र आंशी की तरफ देखा जो कमज़ोर हालत में वहाँ बंधी हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेट का दिल पिघल गया। वो मलिक को रोकना चाहता था लेकिन मलिक फिर बोला, अरे, इसके बॉयफ्रेंड के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा रहम बरत रहे हैं, ऊपर से ये एक लड़की भी है। इसकी जगह विधिक होता तो अपने साथ धोखा करने वाले अपने दुश्मन को बर्फ के ऊपर लेटा कर रखता। ये तो तुम्हारी टॉर्चर की शुरुआत है, बटरफ्लाई, हैव फन।
मेट को सब कुछ समझाने के बाद मलिक वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मेट आंशी के पास आया। उसे अपने पास आते देख आंशी घबरा गई। वो अपनी जगह पर सिमटने लगी।
घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला, मेट बोला। अब तो मुझे अपने साय पर भी यकीन नहीं रहा, फिर तुम तो मलिक जैसे आदमी के लिए काम करते हो। तुम एक ऐसे आदमी के साथ हो जो मुझे तकलीफ देने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है, और यकीन करने की बात करते हो।
मैं अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ आया हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
आंशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे मुंह फेर लिया। आंशी की आंख में आंसू थे, वो समझ चुकी थी कि इस जगह से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेट को आंशी से आगे बात करने का मौका नहीं मिला और मलिक के बाकी आदमी आ गए। उनमें से एक आदमी बोला, बॉस ने इस कमरे को इस लड़की के हिसाब से तैयार करने के लिए कहा है, कुछ आदमी आने वाले हैं, तब तक इसे दूसरे कमरे में ले जाओ। मेट ने उनके बात पर हामी भरी और आंशी को खोलने लगा। अचानक उसका हाथ आंशी के हाथ को छू गया। तब उसने महसूस किया वो बुखार से कांप रही थी। मेट को सच में आंशी पर बहुत दया आ रही थी। इसे बहुत तेज फीवर है, अगर वो ठंडे कमरे में रही तो मर जाएगी। तू इस काम में नया आया है इसलिए तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, हमने इन आंखों से कई लोगों को मरते देखा है, उनकी मरने जैसी हालत होने पर भी उन्हें टॉर्चर किया है। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे, फिलहाल के लिए जितना कहा है उतना करो। अगर तुमने इस लड़की के लिए दया दिखाई तो कहीं ऐसा ना हो जो ये झेलने वाली है वो तुम्हें भी सहना पड़े, उस आदमी ने मेट को समझाया। मेट ने उसकी बात पर हामी भरी और आंशी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूसरे कमरे में ले जाने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद उसने कमरा अंदर से बंद किया और आंशी के पास आकर कहा, मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में हेल्प कर सकता हूँ, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? यहाँ से जैसे तैसे निकल भी जाऊँगी पर फिर कहाँ जाऊँगी? तुम नहीं जानते मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स विधिक के पास हैं। अगर मैं उसके पास वापस गई तो एक कैद से निकलकर दूसरे कैद में जाने जैसा होगा, और मेरा यकीन मानो ये कैद उस कैद से ज्यादा बेहतर है, आंशी ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो मेट के कंधे पर बेहोश थी। मेट ने उसे कुर्सी पर बैठाया और बांध दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो आंशी की मदद कैसे करे। वो आंशी के पास बैठकर उसकी निगरानी कर रहा था और लगातार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो बहुत मासूम लग रही थी। इसे यहाँ से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, मुझे विधिक राणा को बताना होगा कि मलिक ने उसे किडनैप कर लिया है। इससे मलिक की जान को खतरा हो सकता है और साथ ही मेरी भी, पर ये बचकर निकल जाएगी। आई नो विधिक क्रिमिनल है, पर फिलहाल के लिए इस लड़की को वही यहाँ से निकाल सकता है।
रही बात मेरी तो मुझे किसी से बचने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं। वहाँ बैठे बैठे मेट ने आंशी को बचाने का प्लान बना लिया था। आंशी होश में थी, उसे मेट की बातें सुनाई दे रही थी, पर उसकी हालत ऐसी नहीं थी वो उसे ये कह सके कि वो विधिक के पास वापस नहीं जाना चाहती। नीचे नीचे डैश। अगली सुबह विधिक की आंख खुली तो आंशी उसके बगल में नहीं थी। अक्सर वो उसके पहले उठ जाया करती थी, इसलिए विधिक को ज्यादा फिक्र नहीं हुई। वो नॉर्मल तरीके से उठकर बाहर आया। बाहर हरलीन डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी। विधिक उसके पास आकर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बुआ, अंश कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? कल रात को तुम्हारे साथ ही थी। ये सवाल तो मुझसे पूछना चाहिए कि आंशी अब तक उठी क्यों नहीं। आज तुम दोनों ने शादी करना प्लान किया था ना, वो इतना लेट तक सोएगी तो सब कैसे होगा? हरलीन ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विधिक चौंक गया। वो जल्दी से उठा और पूरे घर में दौड़कर उसे ढूंढने लगा। लगभग 10 मिनट में उसने पूरा घर छान मारा, पर आंशी उसे कहीं नहीं मिली। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन गार्डन एरिया में भी आंशी नहीं थी। बुआ, मुझे आंशी कहीं नहीं मिल रही, क्या आपकी उससे कोई बात हुई थी? विधिक ने घबरा कर पूछा। हरलीन ने जवाब में ना में सिर हिला दिया। हमें एक बार फुटेज चेक कर लेनी चाहिए। विधिक ने हाँ में सिर हिलाया और अपना लैपटॉप लेकर बाहर आया। वो दोनों लगभग रात के 1 बजे सोने के लिए गए थे। विधिक ने उसके बाद का फुटेज प्ले किया। वो हरलीन के साथ फुटेज देख रहा था, तभी उन्होंने देखा रात के लगभग 3 बजे के करीब आंशी घर से बाहर निकल रही थी। उसे बाहर जाता देख वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंशी कभी ऐसे अकेले बाहर नहीं निकलती हैं। कहीं आपने उसे कुछ बता तो नहीं दिया? विधिक ने शक भरी निगाहों से हरलीन की तरफ देखा। लास्ट टाइम हम दोनों साथ में किचन में थे, उसके बाद तुम अपने कमरे में गए। तुमने मुझे बताया था कि तुम दोनों फिजिकली इन्वॉल्व होने वाले हो, कहीं इस वजह से तो वो नाराज होकर नहीं चली गई? मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था, सब उसकी मर्जी से ही करने वाला था। हरलीन को सब बताते हुए अचानक विधिक को याद आया कि जब वो वापस पानी लेकर कमरे में पहुंचा था, उसके बाद से ही आंशी अजीब बर्ताव कर रही थी। उसने जल्दी से वीडियो बैकवर्ड किया तो पाया जब वो किचन में हरलीन से बात कर रहा था, तब आंशी कुछ देर के लिए वहाँ आई थी। उसे वहाँ देखकर उन दोनों को समझने देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। विधिक ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। मैंने आपसे मना किया था, आप इस बारे में आंशी के सामने बात तक नहीं करेंगी, फिर क्या जरूरी था आपको मेरे काम के बारे में बात करने की?
ओ रियली विधिक, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? एक बार खुद की तरफ देखो। तुम जो काम करते हो उसके बाद कोई भी लड़की तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। आंशी जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। खुद को बदलने के बजाय तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने तुम्हें बदलने का कहा। डिस्कस्टिंग। विधिक के इल्ज़ाम लगाने की वजह से हरलीन भी गुस्सा हो गई। बुआ, उसे मेरे बारे में सब पता चल गया है, वो मुझसे नफरत करने लगी तो? आप नहीं जानती, पर जब मैं वापस गया तो वो पूरी तरह बदल गई थी। वो मेरे पास आने से डर रही थी, वो कांप रही थी। वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा बुआ। अपना गुस्सा भूलकर विधिक आंशी की फिक्र करने लगा। हरलीन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, एक बार तुम इन सब के बारे में भूल जाओ और आंशी के बारे में सोचो। तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं विधिक, छिपे हुए दुश्मन। उनमें से कुछ लोग आंशी के बारे में जानते हैं। गलती से भी वो उनके हाथ लगी तो तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या होगा? नहीं बुआ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। पहली बार विधिक के चेहरे पर घबराहट थी, वो भी आंशी के लिए। उसने तुरंत मलिक को कॉल लगाया। मलिक उस वक्त आंशी के साथ था। उसने आंशी के कमरे में इतनी कूलिंग कर दी थी कि कोई आम इंसान वहाँ कुछ देर में ही जम जाए। विधिक का कॉल आता देख मलिक मुस्कुराता हुआ आंशी के पास आया। उसने आंशी का मुंह अपने हाथ से कसकर बंद कर लिया और विधिक का फोन उठाकर स्पीकर पर किया। मलिक, तुम अभी के अभी मेरे घर आओ, आंशी नहीं मिल रही है। विधिक के चेहरे की घबराहट उसकी आवाज़ में साफ सुनाई दे रही थी। मलिक के आदमी भी उसके आसपास थे। वो सब विधिक की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा रहे थे। सर, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, मैम इधर उधर घूमने गई होंगी, आपने अच्छे से चेक किया? बोलते हुए मलिक ने आंशी का चेहरा और भी कसके पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द से आंसू आ गए। मैंने सब जगह चेक कर लिया है, वो कहीं नहीं है। शायद उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो घर छोड़कर चली गई है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि मेरा कोई दुश्मन उस तक पहुंचे। जरूरी नहीं कि उसे पकड़ने वाला आपका दुश्मन ही हो सर। हाँ, लेकिन मैम का दुश्मन जरूर हो सकता है, उनके चल पे आपने कईयों की डील कैंसिल की है। मलिक को विधिक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उससे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन जब से आंशी आई थी सब बदल गया था।
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो, कहकर विधिक ने कॉल कट कर दिया। उसके फोन कट करते ही मलिक ने आंशी का मुंह छोड़ दिया। वो जोर जोर से रो रही थी। मलिक हंसकर बोला, पता है मैंने तुम्हारी आंखें बंद क्यों नहीं की? ताकि तुम हर एक दर्द को महसूस करने के साथ साथ देख सको। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर चीख से मुझे खुशी मिलेगी। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत सुकून दे रहे हैं, बटरफ्लाई। उसके सामने बहुत सारे एसी के रिमोट पड़े थे, जिससे उसने रूम टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर दिया। आंशी ने बिल्कुल पतला सा ड्रेस पहना था। वो ठंड से ठिठुर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहाँ से निकलने से पहले मलिक ने कहा, मुझे आने में टाइम लग सकता है, तो इसके कमरे की कड़ी निगरानी रखना। पर याद से, इसके कमरे में कोई नहीं आएगा। इसे खोल दो और खाना इसके पास रख देना। इसे खाने के लिए एक वक्त का खाना देना, लेकिन सिर्फ इतना ही कि जिससे वो जिंदा रह सके। इसके पास पानी की एक बॉटल रख दो। पूरे दिन में इसे इतना ही पानी मिलेगा। मलिक अपनी तरफ से आंशी को दर्द देने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर आंशी चिल्ला कर बोली, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? मैंने बोल दिया मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरी कोई गलती नहीं है। इतनी ठंड में आंशी की आवाज़ बैठ गई थी। उससे ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। मैं तुम्हारे साथ वो सब क्यों कर रहा हूँ? मलिक सनक भरे तरीके से बोला, फिर जवाब में हंसकर कहा, बस यूं ही मज़े मज़े में। मलिक सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। साथ ही उसके जाते ही उसके सारे आदमी उस कमरे के बाहर थे। आंशी अकेली उस कमरे में ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। मलिक के आदमियों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बत बने अपने कामों में लगे थे। उनमें से दो आदमी सीसीटीवी पर नजर रखे हुए थे, जबकि मेट आंशी के कमरे के बाहर था। उसे आंशी के खांसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी।